ओम शांति। हमारी आने वाली दैवी दुनिया में जाने के लिए हम सब तैयारियां कर रहे हैं। मुख्य बात है अपने संस्कारों को दैवी बनाना, उसकी पूर्व तैयारी पुराने संस्कारों को भस्म करना। लेकिन जैसे कि रविवार को बाबा ने कहा था, रावण के संस्कारों को मेरा मेरा कहते हो तो दैवी संस्कार मर्ज हो जाते हैं। आइए, ऐसी कौन सी विधि अपनाएं जिसके आधार पर हम पुराने संस्कारों को भस्म कर दैवी संस्कारों को अपना सकते हैं। इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है जयपुर से पधारे हुए आदरणीय सुषमा दीदी जी। दीदी जी, आपका सभा में बहुत 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 दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपने 1971 में अपना जीवन ईश्वरी सेवा अर्थ समर्पित किया। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम आदि कई यूरोपीय देशों में ईश्वरी सेवाएं शुरू करने के आप निमित्त बने। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आप वक्ता रह चुके हैं। ब्रह्मा कुमारीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपकी अहम भूमिका रहती है। संस्था के विभिन्न प्रभागों के लिए आपने योग्य प्रकार के कोर्सेज निर्देशित किए हैं। बिजनेस विंग के आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। वर्तमान समय जयपुर एवं कनेक्टेड 80 से अधिक सेवा केंद्रों का कारोबार आप सुचारू रीति से संभाल रहे हैं। माउंट आबू हेडक्वार्टर्स के मुख्य फैकल्टीज में से आप एक है। तो आइए इस खास विषय पर खास क्लास सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय सुषमा दीदी जी।
ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग की सुहावनी घड़ियों में भाग्य विधाता बाबा स्वयं धरा पर आकर अपने बच्चों का भाग्य भगवान बनाता है या हम बनाते हैं, क्या विचार है आप सबका? भगवान बनाता है या हम बनाते हैं? हम बनाते हैं या भगवान बनाता है? वास्तव में देखा जाए वो भाग्य विधाता ही इसलिए है क्योंकि वही आकर हमारा भाग्य बनाता है। वो बात अलग है, भाग्य विधाता भाग्य बनाने की विधि बताता है। बच्चे, तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारा भाग्य बनेगा, ये बात राइट है। लेकिन बनाने की विधि, जैसे कोई हमें मदद करता है, हम कहते हैं ना, बस जी आपकी मेहनत से, आपके सहयोग से, आपकी कृपा से हमारा ये काम हो गया। कोई थोड़ा सा भी मदद कर देता है, राय देता है। आप अपने प्रतिदिन के जीवन में देख लीजिए, अगर आपने बचपन में किसी से वो स्कूटर चलाना भी सीखा होगा ना, तो कहेंगे ये मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने मुझे स्कूटर एक ही दिन में सिखा दिया था, इसने मुझे गाड़ी दो दिन में ही सिखा दी थी। हम छोटी छोटी बातों के लिए भी कुछ सीखते हैं तो उसको समझते हैं ये मेरा गुरु है। लेकिन भगवान सर्वशक्तिवान, सदगति दाता, भाग्य विधाता, हम बच्चों को आकर के पूरे कल्प के लिए हमारा भाग्य बना देता है। और अब हम जिस समय से गुजर रहे हैं, वर्तमान समय में हम विश्व की जो स्थितियां, परिस्थितियां देख रहे हैं, हम सब क्या अनुभव कर रहे हैं? पहले तो हम केवल सुनते थे और सुनते हुए फिर एक दो से पूछते भी थे कि अरे बाबा तो कहता है, बहनें तो कहती हैं, ब्रह्मा कुमारियां तो कहती हैं कि अब विनाश होने वाला है। विनाश होगा? अब आप सब क्या कहेंगे, विनाश होगा? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, अभी होगा नहीं, विनाश हो रहा है। आप देखो चारों तरफ की स्थिति, परिस्थिति कैसी है। तो अब हमारे अंदर क्या लगन, हम उसमें नहीं जाते कौन सा देश क्या कर रहा है, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसमें नहीं जाते। लेकिन ये तो समझ ही रहे हैं स्थितियां, परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं। मनुष्य का व्यवहार आप देखिए, क्या क्या न्यूज हम सुनते रहते हैं। आजकल तो दूसरे देशों की बात छोड़िए, स्टेट्स की बात छोड़िए, आजकल तो एक घर में रहने वाला बाप बेटा, भाई भाई, कौन किसको कब मार देता है पता ही नहीं पड़ता है। आगे कभी ऐसा सुना था भाई भाई को ही मार दे? आजकल तो कॉमन है परिवार को भी मारना, फिर बाद में इनको लगता है क्या हुआ तो खुद भी मर जाते हैं। तो स्थितियां परिस्थितियां तो संसार में, ये नहीं कहेंगे कि बदल गई हैं, इतनी बिगड़ गई हैं कि इनमें अपने आप को सुरक्षित ले जाना मुश्किल है। जैसे कभी कभी कहीं कहीं ट्रैफिक भी ऐसा हो जाता है ना, गाड़ी ना आगे सरकती है ना पीछे सरकती है, लोग निकल नहीं पाते हैं। और कई बार तो ऐसी घटनाएं भी सुनते हैं, 10-10 घंटा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो अभी भी देखा जाए, चाहे आप प्रकृति को देख लें चाहे मनुष्य को देख लें, हर प्रकार से रास्ते ब्लॉक हैं। क्योंकि दो का ही मुख्य रोल है, एक है प्रकृति, ये पांच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और दूसरा है फिर मनुष्य। और दोनों की ही हालत ठीक नहीं है, ना मनुष्य की हालत ठीक है ना प्रकृति की हालत ठीक है, पता ही नहीं कब किस समय क्या होगा। लेकिन अब हम बाबा के बच्चों को क्या करना है, अब एक तीसरी चीज है हमारे पास, और वो तीसरी चीज कौन सी है? वो तीसरी चीज है हमारे अपने संकल्प, हमारी अपनी थॉट पावर, थिंकिंग पावर। हम क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, अब वर्तमान समय पर हमें अपनी मनसा पर बहुत काम करना है। क्या काम करना है? आगे तो आपने भी कई बार सुना होगा, मैं सुनाती रहती हूं कि कोई भाई बहन कहते हैं हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूरे विश्व को योगदान देते हैं। तो हम कहते हैं अच्छा भाई 2 घंटा योगदान दिया, फिर 22 घंटे क्या किया, आप क्या कर रहे थे? लेकिन अब तो वो समय भी गया कि आप विश्व को योगदान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं या 10 घंटा दे रहे हैं, अभी वो समय नहीं है। अभी तो समय है मेरी अपनी मनसा कितनी क्लियर है। हमें बाबा क्यों नहीं याद आता, या हम योग में बैठते हैं योग क्यों नहीं लगता, शिव बाबा की याद क्यों नहीं आती? बहुत से भाई बहन कहते हैं बहन जी बहुत कोशिश करते हैं, योग में बैठते हैं तो नींद आ जाती है। ये तो आप देखेंगे कितने को कितना परसेंट कहें बस योग में लाल लाइट हुई नहीं और मैं गई नहीं। आप सोचिए हमारा कितना मन बुद्धि पर विकर्मों का बोझा है, हम भगवान से शक्ति नहीं ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बाबा के बच्चों को ये पक्का करना है। पहली बात, सिर्फ कहना नहीं है कि मेरे सर्व संबंध एक बाबा के साथ हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ये गाना नहीं गाना है, लेकिन पल पल कदम कदम पर देखना है कि बाबा मेरा साथी है। मैं जो कुछ भी कर रही हूं, अभी मैं आपसे बात कर रही हूं, मेरी अंदर में लौ बाबा से लगी हुई है कि बाबा आपकी सेवा है, या बाबा आपने मुझे निमित्त बनाया है, या बाबा इन आपके बच्चों की हम कैसे सेवा करें, मेरा मन बुद्धि कहां लगा हुआ है। मन बुद्धि हमारा हर घड़ी अब केवल एक बाबा ही मेरे मन बुद्धि में है। कोई भी हमारे संपर्क में आए, हमें लगे दूसरे को अनुभव हो कि नहीं, ये तो किसी और ही दुनिया में रहते हैं। अभी जितने भी हमारे पास साधन हैं, आगे शुरू शुरू में हम कई बार सुनाते हैं, जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आए, हम तो छोटे बच्चे थे, लौकिक माँ बाप के साथ आ गए, ज्ञान में आए, उस समय हमारे सेंटर्स पर क्या होता था? तब तो कोई इतने साधन भी नहीं थे कि कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा है या कुछ है, वो भी नहीं थे, केवल ग्रामोफोन होता था, रिकॉर्ड चलता था बस। उस समय अपने इतने गाने भी नहीं थे, ये तो बाद में अपने इतने बाबा के, अब तो हजारों के उसमें है, बाबा के गीत बन गए, बस वो रिकॉर्ड चलाते थे। और योग में कितनी देर, हम कितनी देर योग में बैठ सकते हैं, अपने आप को पूछे। क्या मेरा ऐसा अभ्यास है, मैं 2 घंटे अपने आप को एक बार सेट कर लूं, चाहे धरती पर, चाहे कुर्सी पर, कहीं भी, फिर अगर बैठ गए ऐसे होकर, तो बस बैठे हैं। आजकल तो योग में बैठने को कहें, लाल लाइट हुई नहीं और आंख बंद हुई नहीं। अब हमें वर्तमान में बाबा के बच्चों को ये अभ्यास करना है, कम से कम मैं बाबा का बच्चा 2 घंटा बैठ गए तो बैठ, वो बात अलग है, अभी कहीं जा रहे हैं, कोई सेवा करनी है, 2 मिनट बाबा के कमरे में गए, बाबा मैं जा रही हूं, या बाबा आज ये सेवा है, लेकिन क्या दिन में सवेरे शाम कोई ऐसा समय है जब मैं बाबा का बच्चा 2 घंटा बाबा के आगे बैठूं? तो ये जो बाबा की याद है, दुनिया में भी कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। तो याद क्या है बाबा की? अभ्यास। हमारा अभ्यास कौन सा है सारा दिन? आजकल हम सब का अभ्यास कौन सा है सारा दिन? सारा दिन मोबाइल का अभ्यास है, सारा दिन बातें करने का अभ्यास है, ये क्लास सुना, वो क्लास सुना। क्लास सुनने की मना नहीं है, मेरा मन एकाग्र हुआ। तो अभी वर्तमान जो समय चल रहा है, इस समय में हम बाबा के बच्चों को क्या करना है? अपने मन और बुद्धि को एकदम स्थिर और क्लियर कीजिए। ऐसे नहीं ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है, बेटा ऐसा है, बहू ऐसा, कुछ नहीं। मैं कैसी हूं, मैं अपने को देखूं हर घड़ी, मैं बाबा की याद में हूं, मेरा संबंध बाबा से जुड़ा हुआ है, मैं बाबा से वरदान ले रही हूं, ले रहा हूं, क्या मुझे महसूस हो रहा है बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। इतनी समीपता का अनुभव, बाबा बाबा कहना अलग बात है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा है, बाबा है, बस बाबा तू है, ये हो गया वाणी से, लेकिन मुझे सचमुच वो समीपता का अनुभव हो, मैं एकदम बाबा के करीब हूं, बाबा मेरा है, मैं बाबा की, इसके लिए हम जितना बाबा की मुरलियों का अध्ययन करेंगे, अगर मुझे मुरली अध्ययन करने का अभ्यास नहीं है तो योग कैसे लगेगा। मुरली सुन ली ठीक है, एक बार मुझे मुरली सुननी है, सुन ली, और कोई तो काम करते भी वो मुरली अपनी ऑन कर लेते हैं, सुनते रहते हैं, कहते हैं हमने दिन में 3 बार सुनी, 5 बार सुनी, काम करते हुए सुनी, वो कोई मुरली नहीं है। मैंने मुरली को सुना, मुझे कितने पॉइंट याद हुए, क्या 2, 3, 4, 5 पॉइंट याद हुए, फिर मैंने उसका अभ्यास किया, मेरा चिंतन चला, या चिंतन तो अभी भी यही है, अरे फलाने को फोन करें, फलाने से पैसा लेना है, चलो घूमने का प्रोग्राम बनाएं, अब हमें जो प्रोग्राम बनाने हैं वो घूमने के नहीं बनाने हैं। आजकल तो देखो दुनिया में भी, बाबा के बच्चों में भी हमने देखा है, इतना घूमने का हम सबको शौक है, यहां गए वहां गए वहां गए, मन की एकाग्रता, खाना पीना क्या होता है, भले आप कहेंगे हम तो सेंटर पे सुविधा ले लेते हैं, फिर भी चाहे बाहर का नहीं खाते, बाबा की याद में रहकर कितना खाया। बाबा का है ना एक चित्र, बाबा भोजन स्वीकार कर रहे हैं, बाबा का वो चित्र आप देखना, कैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की याद में भोजन स्वीकार। कई बार बाबा की मुरली में आता है, बच्चे बाबा भी कोशिश करता है कि जब खाऊं तो पूरा टाइम बाबा की याद में रहूं, लेकिन बुद्धि इधर उधर चली जाती है। अगर बाबा को भी मेहनत लगी तो हमारा तो क्या हाल होगा, वो तो बाबा तो शिव बाबा का रथ है। हम तो सेवाधारी हैं, मेरा एक एक श्वास बाबा की याद में जाना चाहिए, मुझे बाबा को अपना साथी बनाकर चलना है। अभी आप सब यहां भी बैठे ना, जहां जहां बैठे हैं, ये महसूस कीजिए, नहीं मेरे साथ बाबा है, चाहे हम सुन रहे हैं सुना रहे हैं, एकदम बाबा के सामने, और वो जो हमारे शौक हैं, यहां घूमे वहां घूमे, ये खाएं वो खाएं, तो सारा दिन मन बुद्धि उसी में घूमती रहेगी, फिर योग कैसे लगेगा। तो वर्तमान समय में बाबा के बच्चों को कौन सी बात पर अटेंशन देंगे, कौन सी बात पर अटेंशन देंगे? कर्म करते हुए, कर्म करते हुए मेरी बुद्धि कहां रहे? एक बाबा के साथ रहे। बाबा हमारा सच्चा साथी है। अभी हमारे इस दुनिया से हिसाब किताब पूरे हुए, कहीं से कुछ लेना देना नहीं है। किसी ने हमारा देना था नहीं दिया, नहीं दे रहा, आप लगे हुए हैं उसके पीछे, छोड़ दीजिए। बाबा बैठा है, मेरा भी तो पिछले जन्मों का, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है ना। हम ये क्यों सोचते हैं कि इसने दिया नहीं, हो सकता है मैंने भी ऐसा कुछ किया हुआ हो। वो हिसाब किताब सामने आ रहा है। हिसाब किताब होते हुए मुझे इस व्यक्ति से लेना है, मैं उसके सामने खड़ी हो जाऊं, मुझे ये संकल्प ना आए कि इसका, इसने मुझे देना है, उसको देना होगा। देने वाले को पता है, वो अपने आप देगा। अगर मेरा दिल दिमाग क्लियर रहा हुआ होगा, अपने आप देगा। और हिसाब किताब कोई और बना हुआ है तो नहीं होगा। तो वर्तमान समय में केवल कहना नहीं है कि मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ हैं, प्रैक्टिकल में देखें, मेरा चिंतन, मेरी बातचीत, मेरा लेन देन किसके साथ हो रहा है। समय मिला तो बातें किससे कर रहे हैं, समय मिला तो हम देख क्या रहे हैं, समय मिला तो जा कहां रहे हैं। इस बार हम मधुबन में आए हैं, हम बाबा के बच्चे ये कमाल करके जाएं। हर कोई सोचे मुझे ये 3-4 दिन में 5 दिन में कोई सेवाधारी हैं, कोई बाबा से मिलने आए हैं, कई अभी आएंगे भी, क्या आज मैंने दिन में 2 घंटा बैठकर बाबा को याद किया? बाबा के यहां तो बाबा का कमरा जगह जगह बना हुआ है, या यहां भी उससे मिला, उससे मिला। तो ये जो मन बुद्धि की क्लीनिंग है, क्लैरिटी है, क्लीन एंड क्लियर, वो ऐसा नहीं। सब बाबा के बच्चे, आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं, एकदम मेरी बुद्धि क्लीन, ये ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। बाबा का बच्चा है, मुझे देखकर संकल्प आ रहा है ये बाबा का बच्चा बैठा है, मुझे महसूस हो रहा है ये बाबा का बच्चा है। क्या मैं ये वाइब्रेशन दे पा रही हूं दूसरे को, लगे कि नहीं ये बाबा के बच्चे कितने अच्छे। तो अभी हमारा संकल्प और हमारे अंदर की जो भावना है, इसका संपूर्ण परिवर्तन होना चाहिए। बाहर का परिवर्तन नहीं, बाहर से मैंने ये सफेद कपड़ा पहना है, ये कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ये परिवर्तन मेरा भाव और मेरी भावना। मेरा भाव एक बाबा में है, बस बाबा मेरा है, और मेरी भावना एक बाबा में है, मुझे जो लेना है बाबा से लेना। अगर मेरा भाव भावना, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिए, अगर मेरी भाव भावना बाबा में होगी तो हमारा योग में भी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होगी। जो योग में बैठने से हम यूं झुटका खाते हैं, बुद्धि इधर उधर जाती है, बिल्कुल नहीं जाएगी, गारंटी है। मेरा तो एक शिव बाबा, कहां जाए मन बुद्धि, एक शिव बाबा। अगर मेरे को अभी भी योग में डिस्टर्बेंस है, इसका मतलब बुद्धि क्लियर नहीं। अपने मन बुद्धि को क्लियर करना, शक्ति कैसे आएगी? नहीं तो अंत समय में अब जब समस्याएं हमारी परीक्षाएं आएंगी तो हमारा मन बुद्धि कैसे स्थिर होगा? हाय फलाना चला गया, हाय फलाने को मार दिया, हाय फलाना मेरा ये ले गया, तो सारा टाइम हाय हाय करते रहेंगे। अब हमें हाय हाय नहीं करना है, ये अनुभव हो, देखो बाबा ने मेरी रक्षा की, बाबा ने मुझे शक्ति दी, मेरा तो सचमुच में बाबा है, बाबा मेरा साथी है, बाबा को अपना साथी बने। ये तो हमें याद ही ना आए कि इसने धोखा दिया और ये मेरी चीज ले गया। और हमारा अगर मन बुद्धि साफ है, आपकी चीज कहीं जा भी नहीं सकती है, अपने आप आपकी चीज आपको मिलेगी। तो इस समय, वर्तमान समय में हमें क्या करना है? अपने संकल्पों पर फुल अटेंशन देना है। कौन सा अटेंशन देना है संकल्पों पर? मेरा तो एक शिव बाबा, कहीं ना जाए। आप कहेंगे बहन जी घर गृहस्थी में रहे, आप कहीं भी रहिए, घर गृहस्थी में रहिए, धंधा कीजिए, नौकरी कीजिए, सब करते हुए बस मेरा तो एक बाबा है। हम कब ये अनुभव करेंगे बाबा ने मेरे सब काम किए? वो भक्ति की तरह नहीं कि हे भगवान मेरा ये हो जाए तो 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 100 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा, वो वाला नहीं। लेकिन राइट टाइम पर राइट बात मुझे क्लिक हो रही है, बाबा मुझे सब जगह गाइड कर रहा है और मेरा दिल दिमाग एकदम बाबा के साथ है। हमने शुरू शुरू में देखा हमारी दादियां थी, यज्ञ में हमने देखा बहुत शांत रहते थे ये लोग, बोलते नहीं थे। और हम लोग भी जब मधुबन में आते थे तो कहते थे नीचे से, उन दिनों तो माउंट में रहते थे, नीचे अपनी कोई वो साधन नहीं होते थे, गवर्नमेंट बसेस से जाते थे, भूरी दादी जी लेने आते थे, वो पहले हमें डायरेक्शन सुनाते थे, मधुबन एकदम सूक्ष्म वतन है, आप जाएंगे आपस में बात नहीं करेंगे, आवाज नहीं करेंगे, सब ऐसे वो 8-10 डायरेक्शन दिए हुए होते। और जैसे ही मधुबन में पांडव भवन में एंटर करते थे बस लगता था हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए। आज भी आप जाओ, आप लोग आते हैं जाते हैं ना ऊपर, मधुबन देखते हैं ना, मधुबन को देखो। और जो मधुबन में तपस्या के वाइब्रेशंस हैं, उन वाइब्रेशंस को महसूस नहीं करना, लेकिन उन वाइब्रेशंस को अपने में समाओ। वाइब्रेशंस हमारे में कैसे समाएंगे? जब हमें शांत रहकर बैठने का अभ्यास होगा। अब मुझे तो अभ्यास ही नहीं है शांति में बैठने का, तो क्या होगा? यहां भी बैठेंगे ना, कोई आया कोई गया, मेरी आंख यूं जा रही है, ये कौन गया ये कौन आया, लेकिन कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, आंख मेरी बाबा पर है, मेरा मन बुद्धि इतना शांत है। अब वो समय आ गया है हम ये ना सोचें कि अभी तो नींद कर लेते हैं, 2 बजे अगर मेरी आंख 2 बजे 2:30 बजे रात को खुल गई, ओह थैंक यू बाबा आपने मुझे, पर वो फिर बैठ के यूं यूं झुक के नहीं खाना, अलर्ट हो जाओ, बैठो बाबा की याद में। बाबा कहते थे बच्चे अगर नींद आए ना तो फिर चलते फिरते घूमते फिरते योग लगाओ। हमने देखा भाई बहन बैठे रहते हैं, नींद आए तो आए, बैठे ही रहेंगे बैठे, ऐसी हठवादिता नहीं है। अगर जरा भी छुटकाता है फट से उठिए। और फट से हम उठ करके नहीं, बाबा से शक्ति खड़े होकर योग करें, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा। तो सर्व संबंध जोड़ने का अर्थ क्या है? यही है जहां हमारी फ्रेंडशिप होती है, जहां हमारा रिलेशन होता है, कुछ भी होता है तो हम कहते हैं अरे ये थोड़ा काम है कैसे करूं, आप मेरे को राय दो ना, वहां जाना है आप चलो ना, आज हमने ये स्पेशल बनाया है आओ आप भी खाओ ना। कदम कदम पर हम बच्चों को अब ऐसे बाबा की याद वर्तमान में आनी चाहिए, सब बातों से दूर। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अभी आज अपना मोबाइल फेंक दो, नहीं, तो थोड़े दिनों में आप पे ही बंद होने वाला है, हम नहीं करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, ये साधन अपने आप ही खत्म होने वाले हैं। अब तो हम ये अभ्यास करें, बस मेरे को बाबा की डायरेक्ट टचिंग आ रही है, लेकिन ये टचिंग तब आएगी जब मुझे 2-2.5 घंटे योग में बैठने का अभ्यास होगा। अगर अभ्यास नहीं है 2 घंटे बैठने का, बाबा की टचिंग नहीं आएगी। एक बार अव्यक्त बाबा ने कहा था मान लीजिए मुझे अभ्यास नहीं है अमृत वेले बैठने का, योग करने का, कोई बात नहीं, अच्छा मैं शाम को बैठ सकती हूं 2 घंटा, जब मैं बैठ सकती हूं उस समय बैठ के एकाग्रचित होकर, और आगे भी हमने ये बात कही थी, बहुत भाई बहन जब मिलते हैं तो अनुभव सुनाते भी हैं कि बाबा की मुरलियां 69 से लेकर के, हमने स्टडी नहीं की पेपर कैसे देंगे, बाबा की मुरलियों की स्टडी, हमारे मन बुद्धि की क्लैरिटी ही तब होगी जब मुरलियों की स्टडी का अभ्यास। आगे जो बच्चे पढ़ते थे का तो अब हुआ है, आगे तो कहां जाते थे, गुरुकुल में जाते थे ना पढ़ने। आप देखो कृष्ण सुदामा का कहां दिखाते हैं, वो गुरुजी के पास जाकर जंगलों में पढ़ते थे, आजकल की तरह थोड़ी था कि स्कूल के वो हॉस्टल्स हैं और टेबल चेयर है, वहां बैठ के ना एकदम अपनी साधारण उसमें पढ़ते थे, अभ्यास करते थे। हम बाबा के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, मैं कितना स्टडी कर रही हूं, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम काम छोड़ दें। फिर कोई कोई कहते हैं मैं तो सारा दिन बहन जी मुरली पढ़ने में लगी रहती हूँ, लगा रहता हूँ। नहीं, अपना काम भी, घर बार का भी करना है, जॉब भी करना है, सब करना है, लेकिन हम सब के पास समय है सवेरे और शाम। सवेरे और शाम बैठकर खूब मुरलियों का अध्ययन कीजिए। आप सवेरे 2 बजे 3 बजे नहीं उठते कोई बात नहीं, 4 बजे उठिए, उठ के अध्ययन कीजिए, बैठकर मुरलियां पढ़िए, पर ऐसा नहीं मुरली लेके, कई तो मुरली लेके भी यूं यूं सोते रहते, वो वाला अध्ययन नहीं चाहिए, अलर्ट होके। कई कई भाई बहन सुनाते हैं, बहन जी हम तो जब से बाबा के बने हैं बस सवेरे उठते हैं 3 बजे, सबसे पहले नहा के फिर बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मुरली का अध्ययन करते हैं। कितना अच्छी बात है। रात्रि को जल्दी सोना, मैक्सिमम 10। हमारी निर्मल शांता दादी जी थी, वो कहा करती थी, सेंटर्स पर रहते थे और कभी कोई अधिक सेवा होती थी, कोई प्रोग्राम होता था, दादी जी हमेशा कहती थी 10 माना बस, एकदम। अगर आप 9:30-10 के बीच में सो जाएंगे, आप देखिए आपकी आंख कैसे खुलेगी सवेरे। और उसके लिए भी बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है, कभी वो मुरली भी आ जाएगी, बाबा ने कहा हुआ है बच्चे रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा योग करके बाबा को अपना सारा पोता मेल देकर फिर सोना है। इसलिए आप में से कईयों को अनुभव होगा, सवेरे यहां आते हैं 4 बजे योग करते हैं, यहां भी 1-2 झुटके खा लेते हैं, कोई तो अच्छा योग भी करते हैं, और फिर योग के बाद जाके फिर थोड़ी देर सो जाते हैं। कहते हैं योग के बाद जो सोते हैं ना तो नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मन बुद्धि शांत हो गया। अगर आप रात्रि को भी, और ये तो बाबा का डायरेक्शन है मुरली में, रात को सोने से पहले आधा घंटा बाबा के आगे बैठो और बाबा को पूरा अपना दिन भर का पोता मेल सुनाओ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, गलती की नहीं की, कुछ भी किया है बाबा को सुनाइए। जब बाबा को पूरा पोता मेल देंगे और फिर बाबा की याद में सोएंगे तो फिर आप देखो हमारा चार्ट कितना अच्छा हो जाएगा, फिर आत्मा में देखो शक्ति कितनी आ जाएगी। तो अब जैसे विश्व परिवर्तन होगा नहीं, विश्व परिवर्तन तो हो रहा है, प्रोग्राम पहले पूछते थे विनाश होगा नहीं होगा, अभी होगा या नहीं होगा, क्या कहते हैं आप सब, विनाश होगा, विनाश हो रहा है। अब ये मत पूछिए विनाश होगा नहीं होगा, विनाश हो रहा है, दुनिया का हाल बहुत खराब है, लेकिन मेरा एक एक श्वास, एक एक संकल्प सफल हो रहा है या नहीं। मेरी एक एक भाव और भावना शक्तिशाली है या नहीं, श्रेष्ठ है या नहीं, या अभी भी अरे तुम्हें क्या बताऊं ये भाई ऐसा है, अरे ये है ना ये बहन तुम्हें पता नहीं ये ऐसे, यहां ऐसे और फिर घर गृहस्थी में भी वैसे, बहू ऐसी सासू ऐसी। हर घड़ी अपने से कहिए मैं बाबा का मीठा प्यारा बच्चा, मैं बाबा का मीठा प्यारा बच्चा। आप सब हैं, कौन कौन है बाबा के मीठे प्यारे बच्चे, कौन कौन है, हैं सब, सब हैं ना बाबा के मीठे प्यारे बच्चे। तो क्या करेंगे मीठे प्यारे बच्चे, क्या करेंगे, एक एक श्वास को सफल करेंगे, एक एक सेकंड को सफल करेंगे। रहें घर गृहस्थी में लेकिन मेरा टाइम फिक्स हो, मुझे इतने बजे से इतने बजे तक योग करना ही है। आप भी कईयों को जानते होंगे, हम तो अभी भी देखते हैं, कई भक्त हैं उनका फिक्स है, सवेरे 4 बजे उठ जाएंगे, 3 बजे उठ जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे और उनको 2-3 मंदिरों में जाना है वो जाएंगे, फिर आकर अपना कुछ काम करेंगे। तो हमारा मंदिर कौन सा है, हमें भी सवेरे सवेरे बाबा के पास परम धाम में जाकर बैठ जाना है और बस बाबा आंख खोलकर हर भाई बहन ये पक्का कीजिए। कौन सी बात पक्की करेंगे? आंख खोलकर योग में बैठना है। कैसे बैठना है बोलिए, या आंख बंद करके? पक्का करो। अभी आप यहां क्लासेस करेंगे योग में, बस ऐसे बैठो ना खुली आंख से। कृष्णपुरी में चलना है आपको, आप कभी कृष्ण का कोई चित्र देखिए जिसमें श्री कृष्ण स्वदर्शन चक्र चला रहे हैं। एक तो है उनके बाल रूप के चित्र और एक है स्वदर्शन। आप स्वदर्शन चक्र चलाते हुए देखिए कभी, भक्ति का चित्र भी आप पाएंगे। एकदम ऐसे सीधा खड़े हैं और आंख ऐसे खुली है। हम बाबा के बच्चे भी, चाहे माताएं हैं चाहे भाई हैं, कैसे बैठेंगे योग में? ऐसे नहीं कुर्सी पर बैठे हैं तो बस ऐसे बैठ गए ना। कुर्सी बैठने के लिए है, आराम के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है। कुर्सी पर बैठिए, एकदम ऐसा सीधा होके बैठिए और बैठ के अपनी आंख भी है। आप विश्व को योगदान कैसे देंगे? अब मैं ऐसे आंख बंद करके बैठी हूं, वो बेचारा सामने वाला शांति मांग रहा है, सुख मांग रहा है, आनंद मांग, दिखाई नहीं देगा तो बस देंगे क्या? आंख खोल के बैठिए, मैं विश्व की आत्माओं को सुख शांति आनंद। तो अभी वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ ये है, एक एक संकल्प, एक एक मेरी भावना भाव सब बहुत क्लीन एंड क्लियर है। कहीं स्वार्थ नहीं है, कहीं बदले की भावना नहीं है, किसी से हमें कुछ लेना नहीं है कुछ देना। देना होगा तो दे देना, ऐसे नहीं कि बहन जी ने कहा था देना नहीं है। अपना हिसाब किताब चुप तू करें, तब तो हम सत्ययुगी दुनिया में आएंगे। तो अब सत्ययुगी दुनिया में आने के लिए केवल बाबा के घर में आना, नियम प्रमाण मुरली सुनना, नियम प्रमाण योग कर लेना काफी नहीं है। कौन कौन आएंगे सत्ययुग में? सत्ययुग में कौन कौन आएंगे? सब आएंगे। तो सब आने वालों को क्या करना होगा? सत्ययुग में आने के लिए अब मेरे सब पुराने हिसाब किताब फिनिश। मेरा भाई ऐसा है, मेरी भाभी ऐसी है, कोई नहीं। मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा पार्टनर ऐसा है। अब सत्ययुग में आने के लिए तो मेरे संबंध किसके साथ है? किसके साथ है? मेरे संबंध एक पापा के साथ है। अब मुझे तो सत्ययुग में आना है। अपने अंदर धुन लगाइए। देखो आप मधुबन में आए हैं ना, कोई चार दिन पहले आए होंगे, कई आज आए होंगे, कोई कल आए होंगे। आप कैसे आए? कहेंगे ट्रेन से आए, अपनी गाड़ी से आए। लेकिन आपको कितने दिन पहले धुन लग गई? दो चार दिन पहले तो जाना है जाना है जाना है जाना है। फिर ये भी होता है, रहने को जगह पता नहीं कहाँ मिलेगी। बहन जी को कहेंगे बहन जी हमें फलानी जगह दिलाना। बैठने को कहाँ मिलेगी? सब आप प्रबंध करके आते हैं। तो अब ये कलयुग खत्म हो गया, अब आप क्या करेंगे? कहाँ जाना है? अब कहाँ जाना है? प्रबंध किया या नहीं किया? अभी मैं सत्ययुग में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी? सत्ययुग में मेरी सीट कहाँ होगी? अपनी अपनी सीट बुक कर लीजिए अभी से ही। और अपनी सीट बुक करने के लिए आज और अभी से क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपने भाव भावना पे गहराई से काम शुरू कीजिए। विश्व को योगदान दें या ना दें आपकी मर्जी है, स्वयं को योगदान दें। बैठिए, थोड़ा सीधा होके बैठिए, तो सब सीधे होके बैठो। अपने हाथ में जो कुछ है छोड़ दीजिए और सीधा होके बैठे। आंख एकदम खुली रखना सामने और महसूस कीजिए शिव बाबा की शक्ति, शिव बाबा का प्रकाश। शिव बाबा की किरणें, शिव बाबा का आशीर्वाद, दुआएं सब मुझात्मा पर आ रहा है। मिक्स लाइट चालू कीजिए। बाबा का प्रकाश, बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। मैं अति सूक्ष्म आत्मा, बिल्कुल शिव बाबा के करीब। फिर फरिश्ता बनकर स्वयं को मधुबन में ले आइए। मैं मधुबन में बाबा के कमरे में, बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अपनी दृष्टि को खुला रखिए, बाबा से दृष्टि लीजिए। पक्का करें, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, भाग्य विधाता बाबा का बच्चा, बाबा का वरदानों भरा हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर।